اللہ کی رحمت میں رہے،
ہم یہ دعائیں کرتے رہے
عید کی یاد میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کا مدنی چینل، آج ہم آپ کے ساتھ عید منانے حاضر ہوئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو عید مبارک۔ عید کی خوشیاں جب آتی ہیں، یقیناً اپنے ساتھ مسرتیں لے کر آتی ہیں۔
کیا بات!
لیکن بعض ایسے چہرے ہوتے ہیں کہ جو ان خوشیوں میں ہمیں یاد آتے ہیں۔
جی جی، ویسے بھی
جب وہ خوشیاں ان کے ساتھ منائی جاتی تھیں تو بڑی ہی پیاری پیاری یادیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کی مسکراہٹیں، ان کی دعائیں،
کیا
ان کی صحبتیں اور ان کی برکتیں، یہ سب ہمیں یاد آتی ہیں۔
سب یاد۔
عید کے موقع پر عام طور پر نئے کپڑے ہم پہن لیتے ہیں، مگر سچی بات ہے کہ اپنے پیاروں کی یاد سے بعض اوقات دل بھیگ جاتا ہے،
دل بھیگ جاتا۔
تو یہ یادیں آج ہم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے کچھ مہمان بھی ہیں، آئیے اپنے مہمانوں کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے۔
ماشاء اللہ، ہمارے حاجی رفیق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، عید مبارک۔ آصف بھائی، عید مبارک۔ ماشاء اللہ،
کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بہت عید مبارک،
بہت ماشاء اللہ، عید مبارک۔
ماشاء اللہ، آصف بھائی، ماشاء
اللہ،
عید مبارک۔
امان بھائی،
ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام، حضور آپ کو بہت عید مبارک۔
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ
امان بھائی،
آج صبح سے ہی آپ مدنی چینل پر عید کے مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً دعوت اسلامی کے اس پیارے پیارے مدنی چینل کی ایک برکتیں یہی ہیں کہ کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، ہمیں بہت ساری معلومات، بہت ساری آداب یہ سکھاتا ہے۔
جی
الحمدللہ۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان آ چکے ہیں، اور یقیناً آج ہم اپنے پروگرام جس کو ہم نے کرنا ہے، اور وہ ہے عید ان کی یاد میں۔
سبحان اللہ۔
اور یقیناً زندگی کی جس حصے میں ہم پہنچ چکے، جو عمریں ہماری ہو چکی، تو بچپن سے ہی اگر چلتے ہیں تو دادا، نانا، ماموں، پھوپھا، خالو ہیں، اور نانی، تو مومانی، تو مطلب یہ سب جو بھی رشتے ہیں،
بہن بھائی، بچے، دیگر افراد جو شامل ہوتے ہیں۔
جی جی، تو یہ شروع سے اگر چلے نا اپنے یوسف بھائی، تو شروع سے تو اولڈ ایج ہی ملیں گے۔
جی جی،
یعنی یوں سمجھے کہ ہمارا بچپن، تو بچپن میں نانا دیکھے، نانی دیکھیے، ماموں دیکھے، خالو دیکھے، پھوپھیاں دیکھیے، خالائیں دیکھیے، اور یہ سب چلتے 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 جب ہماری ایج بڑی ہوئی تو پھر اوپر کے لوگ رخصت ہوتے گئے،
اوپر کے لوگ رخصت،
تو پھر آج ظاہر ہے ہم بھی دادا بن گئے، تو ہم بھی نانا بن گئے۔ تو خیر، اللہ پاک جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت
فرمائے،
اور جو حیات ہے اللہ ان کو صحت و سلامتی دے۔ اور تو آج اصل میں بیسیکلی جو ہمارا ٹاپک تھا، یوسف بھائی آپ کیا بیان کریں گے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے؟
حاجی صاحب، اصل میں ہمارا جو آج ٹاپک ہے نا، یہ موضوع اس قدر پرفیکٹ اور دل کے قریب جا کے لگتا ہے کہ انسان اپنی یادوں کی طرف بڑھے، کہ کبھی ایک ایسا وقت تھا کہ جب ہم اپنے بڑوں کے ساتھ عید منایا کرتے تھے، وہ بڑے جن کی شفقتیں ہم کبھی بھول نہیں سکتے، اور ان کی شفقتوں کے سہارے جیتے جیتے ہم یہاں تک پہنچے، اور اب ہماری شفقتوں کی متلاشی ہمارے چھوٹے موجود ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام ہے، انہی بڑوں کی یادوں کو اپنے دلوں میں بسا کر بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔
اچھا، مدنی چینل کے ناظرین، عید کے تیاریوں میں والدین کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔
سبحان اللہ،
ہیں والدین کے حوالے سے جو اگر ہم غور کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بھی ہماری ایک بیسکس یادیں رہتی ہیں ہمیشہ. تو والدین کے حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر جب کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو والدین ہیں ان کا عید کے حوالے سے اپنے بچوں کے لیے جو کوششیں کرنا ہے نا یہ بڑا نظر آتا ہے. اور اس میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنرلی منتھ وائز جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس موقع پر آ کر وہ ایک سمجھنے کے آزمائش کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں. کیا یادیں آتی ہیں اس پر؟
ایسا مختلف یادیں آ رہی ہیں.
اچھا
واقعی, یعنی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ, تو آج کل کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی زمانے میں کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے, اور ایسے بہت سے بچے ہوں گے تو مختلف خواہشات کرتے ہیں کہ ابو یہ دلا دو, اماں یہ دلا دو. اب یہ جو آپ نے ایک بات کی نا, تو وہ ہر وہ والد اس سمجھے کہ آپ نے دکھتی رکھتا ہاتھ رکھ دیا ہے نا, تو جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے تو محسوس یہ ہوتا تھا اس وقت بھی کہ وہ اپنی خواہشات کو قربان کرتا,
اللہ
اور بچوں کی خواہشات کو جو جائز خواہشیں ہوا کرتی تھیں وہ پورا کرتے. یعنی مجھے یاد آتا ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو باپ بھی تھا بھائی بھی ہے رہا یا اور بھی اس کے اور رشتے لگتے ہیں. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں کہ کہنا چاہیے کہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ شاید اس نے اپنی کوئی بھی جائز خواہش پوری نہیں کی, بلکہ یوں کہیں کہ جیسے پھٹے ہوئے کپڑے نا وہ نظر نہیں آئے بس, باقی اس نے سب کچھ کہا کہ نہیں میں اپنے بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ چیز کر لیتا ہوں تاکہ خوشیاں ان کو مل جائیں, اور ہمارا کیا عید تو عید ہے نا, بچے خوش ہو جائیں گے ہمارے لیے عید ہے.
نعمان بھائی یہ مطلب ابھی بھی ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو باپ کی قربانیاں زیادہ, خاص طور پہ والد کی قربانیاں یہ کھل کر سامنے آتی ہیں کہ اپنی ضروریات کو وہ بالکل گویا کہ نظر انداز کر دیا ہے. بچوں کے نئے کپڑے بنے, بعض اوقات اپنے لیے وہ نئے کپڑے نہیں بنواتے, والد جو ہے وہ اپنے لیے نئے کپڑے نہیں بنواتا, کیوں بولے یہ اچھا سوٹ ہے مجھے چل جائے گا, اور وہ مطلب اس طرح کوئی سوٹ اچھا ہے اس کو دھلا کے اور اس کو مطلب تیار کر کے تو اس کو چلا لیا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے نئے سوٹ کا, نئے کپڑوں کا, نئی چیزوں کا انتظام کرنا ہے, ورنہ اگر اس کو یہ محسوس ہوا کہ میرے والد نے مطلب جو ہے نا میرے لیے کوئی نیا سوٹ وغیرہ نہیں بنایا, اور میرے جو دوست ہیں بچوں کے جو مطلب دوست کلاس فیلوز وغیرہ, تو بچوں میں ہوتا ہے کہ تم نے عید کے لیے کیا لیا, تم نے کیا لیا, تو والد کو تھوڑا اس چیز کا شاید احساس زیادہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کروں, میری خیر ہے میرے تو مطلب یہ کہ ہو جائے.
یعنی کہ باپ یہ کہتا ہے صاحب میرے پاس تو ہے نا, میرے پاس تو سوٹ رکھے ہوئے ہیں. اپنے بارے میں فیصلہ کرتے وقت وہ باپ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو ہیں, اور جب بچوں کی باری آتی ہوگا کہ بچوں کے پاس بھی ہوتا ہوگا, لیکن مدنی چینل کے ناظرین وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ہے نا, کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟
یہ جو نوید بھائی نعمان بھائی جو جس ٹاپک کو لے رہے ہیں نا, تو در حقیقت آج ہم جس ایج پر پہنچے ہیں, تو ہم جب چھوٹے تھے تو اس چیز کو فیل نہیں کیا جاتا تھا. ہم یہی کہتے تھے یار کیسے ابو ہیں, ہم کو دلا نہیں رہے, کیسی امی ہے ہمیں یہ مطلب یہ گھر میں یوں پکا نہیں ہے, اتنی عیدی نہیں ملی. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کی جنریشن کو بھی یہ شکوا ہوگا, ہماری وہ خدمت نہیں ہوتی ہے, ہمارے گھر میں وہ ڈشز نہیں بن رہی ہیں, ہمارے کپڑے ہمارے جوتے. بلکہ مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ ایک بچہ ناراض ہوا تھا اپنے والد سے کسی بات پر کہ بائک نہیں دلا رہے کچھ, تو وہ ناراض ہو کر گھر سے مطلب ابو کے جوتے پہن کے نکل گیا. اب جیسے ہی روڈ پر گیا تو چونکہ گرمیوں کا موسم تھے تو اس کو خیال ہوا کہ میرے پاؤں جو ہے نا جل رہے.
اللہ,
اب جیسے ہی اس نے جوتا اٹھا کر دیکھا تو پھٹے ہوئے تھے.
اللہ,
اب یہ سوچ رہا ہے کہ یار اس بار تو میرے ابو نے مجھے جوتے دلوایا, خود کو ان کو یاد آیا کہ میرے ابو نے تو 4 سالوں کے جوتے چینج نہیں کیے.
اللہ,
تو یہ جو نوید بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں فیل کرنی چاہیے, اور سچی بات ہے کہ اگر آج اپنے وہ دنیا سے گئے ہوئے والدین یاد آتے ہیں
اللہ,
جن کو ہم اس بات پر شکوا کرتے تھے اور آج مطلب ہم یاد کرتے ہیں کہ واقعی انہوں نے خود اپنے آپ کو, جیسے کہ نا میرے پاس تو کپڑے ہیں, میرے پاس تو ابھی تو جوتے لیے تھے, ابھی چاہیے میرے جوتے, مجھے چینج نہیں کرنا بھائی, لیکن آپ کے میرے لیے نیا بنیان بھی آ رہا ہے, نئے کپڑے بھی آ رہے ہیں, نئی چیزیں آپ کو لکھ کے دی جا رہی ہیں. तो बहरहाल ये एक लेसन दिया जाता है, उन्होंने जो इस तरह से हमें कुर्बानियाँ दी, तो अगर फी ज़माना कोई ऐसी बात हमें अपने पेरेंट्स के ज़रिए या इसमें घर में कोई ऐसा माहौल बने तो हमें इन मामले में जो है अपने जज्बात को काबू रखना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बात भी रफ़ीक भाई अगर हम देखते हैं ना, वो ये भी होता है कि बाद अवकात जो जनरेशन है वो अपना जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत हाई कर देती है। यानी जैसी मेरी फैमिली है, हैं नवीद भाई
जी,
जैसी मेरी फैमिली है तो मैं मिसाल अगर एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मेरा जो लेवल है वो जिस लेवल पे मैं हूँ ना मुझे उसको देखना बहुत ज़रूरी होगा।
जी सही।
और शायद आजकल की जनरेशन में जो गैप आता है ना उसकी भी एक वजह यही है कि वो अपने से हाई प्रोफाइल की तरफ जाते हैं, नतीजतन बात बिगड़ जाती है। क्या फरमाते हैं?
मुझे बुजुर्गान दीन किया वो कॉल याद आ रहा है कि दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो और दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखो। तो इससे क्या होगा कि अगर वो बंदा अपने से नीचे वाले को देखेगा, मिसाल के तौर में किसी शख्स के पास मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो वो अपने नीचे वाले को देखेगा कि यार उसके पास तो साइकिल है, ठीक है, या वो तो बेचारा पैदल है, अल्लाह का करम है कि मुझे अल्लाह ने मोटरसाइकिल दी, तो उसका जहन शुक्र की तरफ जाएगा और शुक्र वो उसके जुबान से अदा होगा। और दीन के मामले में अगर वो अपने से ऊपर वाले को देखेगा कि यार मैं तो 5 टाइम नमाज पढ़ लेता हूँ बड़ी उससे, और ये जो है तो तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक चाश भी पढ़ता है, रमज़ान के रोज़ों के अलावा नफली रोज़े भी रखता है, तो अगर ऊपर वालों को देखेगा तो उसके जहन में भी नेकी की तरफ रगबत का जज्बा बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन बदकिस्मती से फी ज़माना हम इसका उलट कर दें कि हम दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखते हैं कि यार मेरे पास तो बाइक है, इसके पास तो 4-व्हीलर है, मेरे तो किराया का घर है, इसका तो बंगला है, तो क्या होता है शैतान हमें नाशुकरी की तरफ ले जाता है।
नाशुकरी के अलावा यूसुफ भाई एक बात और भी है, आप नाशुकरी ही की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि ये जो चीज़ें हैं इसको हाईलाइट करके पेरेंट्स के को दुखी करने का भी जरिया
है और उस एहसास कमतरी खामखा अपने अंदर पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पे हरी साहब, किसी बाप ने बड़ी मुशक्कत के बाद अपने बच्चों को लिया कि 2 सूट बनाए और उसी बच्चे ने किसी अपने दोस्त को देखा वो 3 सूट बना के बैठा है ना, तो बच्चा चूंकि उसकी अकल कम होती है तो 3 सूट वाले को ही देख रहा होता है कि उसके 3 सूट में मेरे 2 क्यों बने, उसके पास ये चीज आई और मेरे पास ये चीज क्यों नहीं आई। अलगर्ज मैं तो आज साहब एक बात मेरे जहन में आई कि कैसा वक्त होता होगा उस माँ के लिए कि चांद रात को जब बैठ के पूरे घर के कपड़े इस्तरी कर रही होती होगी और अपने कपड़ों का उसे होश ना होता होगा।
वो तो एक उसूल है ना, वो आजी अब्दुल हबीब भाई का एक प्रोग्राम था, उसने कहा कि यार तन दोस्त बैठे थे तो एक दोस्त ने सवाल किया कि आपकी वालदा की सबसे पसंदीदा डिश क्या है, तो कहा कि जैसे ही सवाल हुआ तो हम सब सोचने लगे अम्मी की डिश क्या, अम्मी की डिश क्या, तो कोई याद ही नहीं आया अम्मी की डिश क्या, तो कहा कि यही सवाल कहीं और हुआ था और यही कैफियत सबकी बनी थी क्योंकि हर कोई ये सोचता था कि यार याद ही नहीं आ रहा अम्मी की डिश क्या है, क्योंकि अम्मी खाना अम्मी पकाती थी और अम्मी हमेशा ये कहती थी कि आज मैंने तेरी पसंद की बिरयानी बनाई है, तेरी पसंद का कोरमा बनाया है, तेरी पसंद की खिचड़ी बनाई है, यानी गोया अम्मी की को पसंद ही नहीं थी।
अल्लाह,
एक ने कहा कि अम्मी की पसंद थी चीज थी क्या, हमारा बचा हुआ खाना,
अल्लाह
कि हम जो बचाते थे ना तो वही अम्मी खाती थी। और ये तकरीबन अम्मियों का आलम होता है क्योंकि माँ बाप ये एक ऐसी हस्तियां हैं जो अपने बच्चों से हसद नहीं करती हैं, ये अपने बच्चों को हमेशा सुख देखना चाहती हैं। हाँ, अगर कोई आप किसी भी मामले में अगर कोई कमजोरी भी देखें तो उनके एहसानात को भुलाया ना जाए, हैं नवीद क्या बोलते
हो? सब आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, ये जो बात चली थी ना तो किसी ने अपनी वालदा से पूछा था,
अच्छा,
कि अम्मी आपकी पसंदीदा डिश क्या है।
अल्लाह,
अम्मी सोच में पड़ गई कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी,
अच्छा, भी सोच में
अम्मी सोच में पड़ गई।
अल्लाह,
तो कहने की बेटा जो होता है मैं तो खा लेती हूँ, आप लोगों के लिए जो बनाती हूँ वही मैं भी खा लेती हूँ। तो कहनी अम्मी आप बताएं आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है, तो वो गौर करती नहीं लेकिन वो ये बता नहीं पाए कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी।
ये
औलाद इतना डिवोशन, मतलब कि बस औलाद को जो पसंद है उसी में मतलब है कि खुशी, उन्हीं की खुशी में उनकी खुशी, उसी में उनकी रिजा है, और यानी कमाल की बात है ना कि इनको अपने बारे में नहीं है कि यार मेरी पसंद की ये चीज़ है तो मैं ये बना, और वो जवाब नहीं दे पा रही कि मेरी पसंद की चीज़ क्या है।
और देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो रिश्ते होते हैं, ये रिश्ते यूं ही इनकी अहमियत बयान नहीं की जाती,
ऐसे ही बात,
माँ बाप के अंदर जो औलाद के लिए शफकत और रहम जो डाला जाता है, और ये तो उलमा ने लिखा ना कि तो जानवरों में भी डाला जाता है, कि जानवर में जैसे घोड़ा जो है वो अपने बच्चे को कभी नहीं कुचलता है, वो जितना भी दम कर रहा हो लेकिन बच्चों को बड़े संभाल के रखेंगे। तो इसी तरह कोई परिंदा अगर घोंसले में अंडे दे दे और उसमें से बच्चे निकल आए, तो आप देखें कभी कभार ऐसा होता है कि घर में कभी कोई घोंसला बन जाए और थोड़ा सा अगर हम हमारी नज़र पड़ती हो तो वो फौरन ताड़ लेता है कि कैसे नज़र कर रहा है। तो जानवर भी परिंदे भी किस तरह से अपने बच्चों की यूँ हिफाजत करते हैं। तो बहरहाल खुश नसीब है वो औलाद कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं, जिनके साथ वो ईद की ये खुशियाँ मना रहे हैं, और जिनके दुनिया से चले गए हैं अल्लाह किससे दुआ भी करें कि अल्लाह उन सब की बेहिसाब मगफरत फरमाए, और जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और जो उन्होंने ये ईद की खुशियों में इनकी भी ये खुशियाँ होती थी वो अपने बच्चों को तैयार करके अपने ख़ानदान में जिस तरह से भी अंदाज होता होगा, तो अल्लाह पाक बहरहाल उन सब की बेहिसाब मगफरत फरमाए और उनके दर्जे बुलंद फरमाए।
यहाँ पर भाई साहब हमारी तरफ से औलाद के लिए मैसेज चला जाए कि हम अपने हालात को देखें,
वाह,
और अपने हाल में खुश रहना सीखें।
क्या बात,
अगर हम ऊपर वालों को देखेंगे तो हम कभी भी अपने अंदर खुशी महसूस नहीं कर सकेंगे, कभी उसको देख रहे हैं उसके पास ये है उसके पास ये है, हमारे पास क्या है इस पर हम कभी गौर ही नहीं करते। अब यकीन माने ऐसे माशरे में कितने अफराद हैं जिनको घर मैसर नहीं है,
अल्लाह,
वो फुटपाथों पे किसी हॉस्पिटल की आप देखेंगे बैक साइड पे तो वहाँ पे उन्होंने रात गुजारने के लिए बिस्तर लगे हुए हैं, वहीं पे कुत्ता भी सो रहा है, वहीं पे बिल्ली भी सो रही है, उनके बच्चे भी वहीं पे सो रहे हैं, उनके पास ना कोई किचन है ना उनका कोई बाथरूम है, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जैसा भी है हमारे पास घर तो है, छोटा है या मतलब है कि कुछ भी है हमारा घर तो है। तो अगर हम उनको देखेंगे तो हमें एहसास इंशाल्लाह ताला पैदा होगा कि हम बहुत अच्छे हाल में हैं, लेकिन अगर हम ऊपर वालों को देखेंगे तो फिर हम मतलब है कि बस इसी में रहेंगे, कभी उसको देखेंगे कभी इसको देखेंगे, बेचैनी की कैफियत और फिर मतलब है कि नाशुक्री की कैफियत, और वो जो ज़िंदगी एक मतलब आदमी अपने हाल में खुश रहकर जो ज़िंदगी गुजार सकता है वो फिर नहीं गुजार पाएंगे। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारे वालिदैन अपनी ताकत से बढ़कर हमारे लिए जो है ना कुर्बानियाँ देते हैं, और वालिदैन ही सबसे ज़्यादा औलाद के खैर ख्वाह होते हैं, इनसे बढ़कर इनका भला चाहने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है।
क्या बात,
बाज़ औक़ात वालिदैन ये जताते नहीं हैं लेकिन औलाद जब थोड़ी समझदार हो जाए तो उसको ये समझना चाहिए कि हमारे वालिदैन की क्या क्या कुर्बानियाँ हैं और किस तरह वो हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारा भी जहन बनेगा औलाद का कि नहीं वालदेन पर बोझ नहीं डालना चाहिए और मिलजुल कर जो हमें मुयसर आ जाए उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए।
और ये जो आपने बात की ना इसको मैं सेकंड करूँगा कि आज के दौर में नौमान भाई ऐसा भी होता है कि बास तो औलाद अपने वालदेन के सामने खड़ी हो जाती है,
अल्लाह
क्या आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, ये जुमला कहा जाता है।
जी जी।
और जैसे नवीद भाई जैसा फरमा रहे ना कि वो एहसान नहीं जताते, यानी माँ ने कभी ये नहीं बताया कि बेटा तू पैदा होकर जो ICU में दाखिल हुआ था तो मैंने अपने जहेज का जो सोना था ना तेरी जान बचाने के लिए दिया था, ये कभी नहीं बताया,
कभी नहीं बताया।
तो ये जो चीज़ें हमको पता भी नहीं है और इस तरह से जो मामला हुए तो बहरहाल इनकी कदर करनी चाहिए। बहरहाल इसमें तो जनरली भी अगर आप किसी को भी इस तरह के मामले में डिग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली दिल दुखेगा,
दिल दुखेगा,
और माँ बाप का जो दिल दुखाए और वो कहे कि मैं दुनिया में तरक्की कर लूँ तो ये शायद आपका पॉसिबल नहीं।
यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आजकल की जो यंग यूथ जिसे हम नौजवान कहते हैं या यंग जनरेशन कहते हैं जो सोशल मीडिया की ज़्यादा शाइक है, ऐसे लोग भी मैंने सुना है और देखा है कि वो कहते हैं कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया है।
अल्लाह,
यानी मैं ये कहता हूँ कि बिलफर्ज मोहाल कि तुम जो इस वक्त सांस ले रहे हो, जो एक कदम एक मौके पे एक स्टेटस पे खड़े हुए हो ना, ये बाप की कुर्बानी का ही नतीजा है कि तुम यहाँ खड़े हुए हो। बाप का पैसे वाला होना या पैसे वाला ना होना कमाल ही नहीं होता, कमाल ही होता है कि बाप का होना कमाल होता है कि बाप वो दरख्त की मानिंदे के खुद धूप की गर्मी बर्दाश्त कर रहा होता है लेकिन अपनी औलाद को साया ही दे रहा हूँ।
क्या बात,
तो एहतियात करनी चाहिए ऐसे नौजवान इस्लामी भाइयों को जो अपने वालदेन को इस तरीके से कहते हैं, खुदारा ये वो साया है, ये वो साहिबान है कि अभी आप घर में लेट आते हो ना तो आपको बताएगा मुझे चिल्लाने वाला है। पूछो उनसे जिनका बाप नहीं है, पूछो उनसे जिनकी माँ नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तरस जाओगे उनकी आवाज सुनने के लिए। लेकिन अगर है वालदेन इनकी कदर कर लो, और आज ईद का मौका है, गले मिल जाओ, खुशियां बांट लो।
और ईद के दिन भी एक सहारा मिलता है। मकसद कहने का ये है कि मदनी चैनल के नाज़रीन, ये पुरमुसर्रत मौका है, और अगर वालदेन हयात है ना तो हाथ चूम लीजिए जाके, उनके पास बैठ जाइए। दौर बड़ा नाजुक है, तवज्जो नहीं देते लोग, ईद दोस्तों में और बाहर रह के गुजार रहे होते हैं, और जिनकी कुर्बानियों जिनकी मोहब्बतें आपके साथ जुड़ी हुई हैं उन्हीं को इग्नोर करते हैं। आज सभी कुछ कहना चाह रहे थे माशाल्लाह,
कि इसमें जो हमारे बच्चों की जो सोहबत होती है ना वो भी बहुत असर करती है।
सही,
इसलिए बच्चे जिन लोगों के साथ बैठेंगे, अब जो ब्रांड के अपना शूज़ लेके आएगा, ब्रांड की टी शर्ट लाएगा, ब्रांड की अपना पैंट लाएगा, तो बच्चा भी बोलेगा मेरे को भी वैसा ही चाहिए। फिर क्या होता है कि वो वालदैन को डिमांड वही करता है। अब इसमें वालदैन थोड़ा सा तरबियत करते रहेंगे, ऐसे बच्चों को अपनी सोहबत में ना जाने दें जो कि अपने से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हों, अपने लेवल के बच्चों के साथ उनको रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये ऐसे मौके आते हैं तो उसमें वो फिर ऐसी डिमांड नहीं करते, इसलिए कि वो सोहबत ही उनकी ऐसी रहेगी तो वो फिर उसी हिसाब से जैसा आप दिलाएंगे वैसे ले लेंगे।
और ये वो कहते हैं ना कि अगर अभी है तो कदर कर लें, वरना फिर वो, और ये जो वक्त इनके साथ जो गुजारा जाता है, नुमान भाई आप जो फरमा रहे हैं कि इनके साथ जो वक्त गुजारा जा रहा है ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अब वो उम्र के उस हिस्से में ये शायद ये सुन नहीं पा रहे होंगे, शायद ये समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त में इनकी दुआएं लेना और इस वक्त में इनको दिल खुश करना, ये मेरा ख्याल है कि शायद हमारा एक पैगाम है आपको कि अगर आज आपके वालदेन हयात हैं तो इनकी कदर करें, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है माशरे में कि ईद दोस्तों में गुजारी जाती है, वालदेन इंतज़ार कर रहे होते हैं, वालदेन इंतज़ार कर रहे होते हैं। जी रफीक भाई।
हाँ जी अमीन भाई, ये इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा कि ये जो रिश्ता है ना वालिद का या वालदा का, ये अपने बच्चों के लिए ऐसा यूनिक रिश्ता है कि इसकी मोहब्बत वो उस रिश्ते में पहुँच कर ही बंदा समझ सकता है।
वाह,
मुझे एक बड़ा अच्छा वाक्या याद है, मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को शेयर करता हूँ कि एक बार बिल्कुल कड़ी धूप थी ना, और छत पे जो है ना वालिद भी था और उसका बेटा भी था, जवान था, ज़ाहिर शादीशुदा था, तो वो कुछ काम कर रहा था। अब वालिद साहब ने तो चप्पल पहनी थी लेकिन बेटे ने चप्पल नहीं पहनी थी। अब वो वालिद साहब उसको कह रहे कि बेटा जाओ चप्पल पहन के आओ, बड़ी धूप है और छत तप रही है, तुम्हारे पैर जलेंगे। अरे नहीं नहीं अब्बू, बस मैं, कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र हैं, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। कई बार कहा वालिद ने, वो नहीं माना, अपने काम में लगा रहा है। अब वो जो दादा था यानी कि उसके जो वालिद, उसने अपने पोते को बुलाया छत पे कि बेटा इधर आना। अब जैसे वो पोता आया, उसका वालिद था वो तड़प गया, अरे ये तुम्हारे पैर जल जाएंगे, ये क्या कर रहे हो बगैर चप्पल के यहाँ आ गए हो, समझे ना। उसने कहा जाओ फौरन जाओ चप्पल पहनाओ। वालिद ने उसको कहा कि देखो बेटा ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे लिए जो जज्बात है इसके लिए ठीक है, यही जज्बात मेरे तुम्हारे लिए। मकसद कहने का ये है कि ये ऐसा यूनिक रिश्ता है, अल्लाह ताला ने ऐसा ऐसी मोहब्बत इसके अंदर कायम की है। और जैसे अभी ईद का आप बता रहे हैं तो एक इंग्लिश प्रोवर्ब मुझे याद आया कि ईद इज ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग,
शेयरिंग एंड केयरिंग
के इसके अंदर वाकई सब कुछ आ गया कि आप ईद में जो है ना शेयरिंग करो, केयरिंग करो, तो इसमें आपके केयरिंग में ज़ाहिर वालदेन भी आ गए, भाई बहन भी आ गए, ठीक है ना, आपके दीगर रिश्तेदार आ गए, तो सबके साथ आप शेयरिंग करो, केयरिंग करो, तो इंशाल्लाह ये ईद जो है ना इसका मज़ा दुबाला हो जाए।
ऐसा हम जो अब इस उम्र में आए, हम थोड़ा पीछे जाए ना अपनी ज़िंदगी में, कैसी यादें थी और आज वो चीज़ हमारे पास नहीं है, यानी कि वो ईद के लम्हात, वो पुरमसरत लम्हात जो हुआ करते थे, और जब हम अपने माँ बाप के साथ गुजारा करते थे, हम अपनी फीलिंग को अगर चेक करें तो ये गैप है। आई साहब क्या कहते हैं इस बारे में, गैप
देखिए बेसिकली तो अगर देखा जाए ना तो ये तो हर उम्र में ये रहा
जी।
अब अगर इस वक्त जो सिलसिला कर रहे हैं, जैसे अगर मैं अगर यहाँ बैठ के कुछ बातें कर रहा हूँ तो मैं अपना तजर्बा, अपना वो वक्त गुजार चुका जब मुझे मेरे वालिद को टाइम देना था, क्योंकि अब मेरे वालिद दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनके वरी के रहमत करे। लेकिन ये कि वो जो फीलिंग्स है जो हम ये आज शेयर कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो उनकी यादें मनाया जाती हैं, तो ऐसा ना हो ना कि फिर हम आज हैं तो हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। यानी इस ईद पर अगर वो हैं तो हम उनको केयर नहीं कर रहे, उनके साथ शेयर नहीं कर रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल ईद तो आनी है, वही ना हो। तो वो जो वक्त था उनके दिल में खुशी दाखिल करने का और वो जो वक्त था उनकी दुआएं लेने का, तो ये वाकई ऐसा दरवाज़ा है कि जो बंद होता है ना तो इसको कोई और ज़रिया नहीं खुल सकता है। यानी ये जो उनके दिल में खुशी दाखिल करके और इनसे जो दुआएं लेने का जो मामला होता है ना, ये वाकई यही वो वक्त होता है कि जिसमें ये तरकीब बनाई जाए। और जैसा हमने कहा कि हम जो उनकी यादें मना रहे हैं और अपने जो अगर मरहूमीन को याद कर रहे हैं, तो वो इसी बात पर कि इस तरह के जो मामला होते थे तो उन पर इनका अंदाज भी खूब होता था। ईद मिलने का जो अंदाज होता था उस बारे में भी तो कुछ यादें दिलाए ना हमारे, कि भाई हमारी जो अम्मी जान थी तो किस तरह से अपने घर में जो है वो एहतमाम करती थी और किस तरह से उनकी सारी रात जो है वो पकाने का इंतजाम होता था और अब्बू जान जो है वो मुख्तलिफ डिशेज जो है वो तैयार करने के हवाले से जो हेल्प होती थी, और फिर जो सबकी जो गैदरिंग होती थी, उन सबके बच्चों का जो आना होता था और एक पूरे घर में जो है ना मेला लगा होता था, ये सब वो चीज़ें हैं कि जिससे इंसान को जो ना वो ताकत मिलती। बल्कि वो अमीर अहले सुन्नत की जो किताब है गलबन नेकी की दावत, उसमें पेरेंट्स के हवाले से लिखा है ना कि माँ बाप ये एक ऐसी हस्ती है कि औलाद अगर दूर भी होती है तब भी ऐसी कोई ऐसी शुआएं होती हैं कि जिससे वो औलाद से जो ना उनका एक ताल्लुक कायम रहता है, और दूर रहकर भी वो अपने जो है ना वो इस तरह के कुछ जज्बात और इस तरह की एक रूहानी जो है ना उनका ताल्लुक कायम हो जाता है। तो ये वो रिश्ते हैं कि जिनकी वाकई एक अहमियत होती है, और वो थे तो रौनक थी। क्या ख्याल है दादी, याद आती होंगी कि यार क्या रौनक होती थी।
अभी आप बात करें तो ज़हन में वो नक्शा,
तो वही नक्शा तो बयान करो ना भाई कुछ।
ईद का मौका होता था ना इतना, तो उस वक्त हमारा बचपन आता था, ऐसी बात है, तो हम अपने दादा हुजूर के यहाँ जाते थे, वो समझो पूरा खानदान जमा होता ना, माशाल्लाह चचा और बच्चे, और तो मेरे दादा हुजूर की जो एक रूम था जिसे हम कॉमन कहते हैं, वो पहले आपने देखा वो झूला लटका हुआ होता था ऐसे, आज भी होता है लेकिन वो एक पुराना स्टाइल का झूला,
घर भी बड़े होते थे,
वो घर भी ऐसे हो गया, मजा आती ना, भाग रहे हैं, खा रहे हैं, इधर भाग रहे इधर भाग रहे, वालदा और सब किचन में लगे हुए बना रहे हैं सबके लिए। तो दादा हुजूर की एक आदत थी कि वो जितने बच्चे जमा होते हैं ना वो सबको एक एक रुपये की नोट देते ना, सबको हमारे लिए वो ईद होती थी ऐसा, एक रुपया, यानी उस वक्त एक रुपये में 16 आने होते, तो वो एक रुपया हमें मिलता था उनको, हमारी तो समझो ईद ही हो गई ना, एक रुपया मिल गया। अब होता ये था कि सारे बच्चे जमा होते और हम मेहमान हैं, तो वो पेने मेमनी में कहते थे दादा हुजूर को, तो वो सब बच्चे लाइन में लगते और बांटते आगे हो जाते। अब मैं था ना, वो शरारत करता था बहुत ज्यादा, अब मैं क्या करता, यूं लेके निकलता और झूला घूम के फिर यूं खड़ा हो जाता ना ऐसे कि वो मुझे देख नहीं पाए, मैं दोबारा मुझे रुपया मिल जाता, तो सब बोलते कि नोमान ने ना डबल ले लिया डबल ले लिया, तो मुझे डांटते हैं डबल क्यों लिया, मैंने कहा ईद है ना, मैंने आज तो ईद है ना मेमनी में कहता, फिर वो
मेमनी में कैसे बोलते,
मेमनी मैंने आज तो ईद है ना वो डीडियो ना, इस तरीके से मैं बोलता था ना, तो वो भी खुश भी होते थे और सब चचा वगैरह जमा होते, और वो जो मैंने मेरे जहन में आज भी वो नक्शा घूम रहा है कि अभी जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ जैसे वो पूरा एक चल रहा है ना, कि सबके चेहरों पे खुशियां, इखलास और एक अखलाक और एक जबरदस्त माहौल, ना हसद ना कीना ना बुक्स ना, जो आजकल ये होता है जो आजकल के माँ बाप से मिलने जाते हैं, बड़े बुजुर्गों से मिलने जाते हैं, फौरन लग जाते हैं और वो तस्वीर से हैरान।
लेकिन इस पर ही अगर हम थोड़ा सा गौर करें, ये जो एक यूनिटी जिसको हम कहें खानदान
को उन्होंने जो है जमा करके और जोड़ के रखा था,
वाकई,
और कोई भी मौका होता तो सब जमा हो जाते थे
एक आवाज पर,
खास तौर पे ईद में बड़ी रातों में सारे बच्चे उनके बच्चे सब जमा हो जाते थे और एक कम्युनिकेशन हो जाता था। हालांकि उस वक्त कोई मोबाइल या कोई ऐसा नहीं होता था, इतना आसान नहीं होता था जमा करना, लेकिन बस एक था
रूटीन था ना नवीद भाई, तय था,
बनी हुई थी
रूटीन था कि बड़ी रात को यहाँ नमाज पढ़नी हो, यहाँ मिलना है, ये आना है तो ये इसके घर जाना है, ईद का दिन है तो जनाब वो नाश्ता यहाँ करना है, जमा यहाँ होना है, ये तकरीबन यही होता था
जी, बिल्कुल ऐसा ही था।
तो साहब जी,
मैं मेरे जहन में एक बात आई ना
जी,
अल्लाह ताला मेरे वालिदा को गदी की रहमत फरमाए, जब वो जिंदा थी ना हाजी साहब, ईद की नमाज की तैयारी के लिए चलो जल्दी से पहनो, आप ये पहनो, तुम्हारे कपड़े वहाँ रखे हुए, तुम नहाने नहीं गए, तुमने भी ये नहीं किया, अम्मी मेरा जारमन, अम्मी मेरा पैन, मेरा बनियान, ये सब काम मात कर रही होती थी। मैं अपनी वालिदा को बताऊँ भाई साहब, जब हम सब तैयार हो जाते थे ना और वालिद साहब के साथ जब नमाज पढ़ने के लिए निकला करते थे, वालिदा की आँखें भीगी हुई होती, एक ऐसी खुशी उनकी आंखों में देखता था मैं भाई साहब, कि शायद वो खुशी में तड़प तड़प के खत्म हो जाओ, दोबारा मुझे नसीब ना हो, कैसी खुशी उनकी आंखों में होती थी, उनकी बॉडी इस बात का इजहार किया करती थी कि आज मेरी औलाद खुश है, और उस खुशी को लेके अपने दिल में बसाती थी और एक तस्कीन पाया करती थी।
मुझे एक बात याद आ रही है नवीद भाई, एक कंपनी को एक मैनेजर की जरूरत थी, तो उस कंपनी ने जो है वो अपना एक पैनल बनाया, और पैनल बनाकर उनके इंटरव्यू शुरू हो गए। अच्छा, जब इंटरव्यू देने कोई भी आता था तो जो बॉस था ना वो भी बैठता था इंटरव्यू में, ये पैनल इंटरव्यू ले लेता और पास कर देता कि ये पास है, तो आखिर में वो बॉस जो है ना उससे एक सवाल करता था, वो सवाल ये करता कि भाई अच्छे मैनेजर की क्वालिटी क्या है। अब वो जवाब यही देता कि सर अच्छे मैनेजर की क्वालिटी है कि वो पंक्चुअल होना चाहिए, कोई कहता कि ईमानदार होना चाहिए, कोई कह रहा है कि भाई एजुकेटेड होना चाहिए, तो यूँ करके वो मुख्तलिफ जवाब देते हैं, मगर वो बॉस जो है ना उस जवाब से मुतमईन नहीं होता, उसको रिजेक्ट कर देता था। अच्छा, पैनल वाले ये सर इंटरव्यू ले लेके थक गए कि यार ये बॉस चाहता क्या जवाब, बॉस क्या जवाब चाहता है। खैर, बंदा ही सिलेक्ट नहीं हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक आम से लिबास में एक नौजवान आया,
अल्लाहू अकबर,
और उसने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए कि भाई मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। अब जब पैनल वालों ने शक्ल सूरत देखे, क्या भाई इतने बड़े बड़े लिखे लोग आए, तेरे से अच्छे अच्छे स्मार्ट लोग आए, वो पास नहीं, तू क्या पास होगा। तो उसने बड़े इतमाद से कहा कि नहीं मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू कॉल करें। खैर, उसका टाइम भी सेट हो गया, बॉस भी बैठ गया उसके साथ, पैनल ने सवालात किए, उसने जवाब अच्छी तरह दिए, सेट सुनता रहा। अब सेठ ने आखिर में उससे भी सवाल किया कि एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी क्या होती है। अब उसने बड़ा अजीब जवाब दिया।
क्या बात।
उसने कहा सर अच्छे मैनेजर की क्वालिटी ये है कि वो अपनी कंपनी को कंपनी के सेठ से ज्यादा जानता हो।
क्या बात।
और उसके होते हुए सेठ को अपनी कंपनी की कोई टेंशन ना हो। अब जैसे ये जवाब दिया तो पैनल के जो लोग थे, शटअप, माइंड योर लैंग्वेज, ये क्या बात कर रहे हो, इस तरह से जवाब देते हैं, यूं करके सब झाड़ने लगे उसको। अच्छा, सेठ मुस्कुरा रहा था। सेठ ने कहा वेरी गुड,
क्या बात,
आपने मेरे मतलब का जवाब दिया, लेकिन ये बात आपने कैसे सीखी है। कहने लगा सर ये बात मैंने अपने घर से सीखी।
सुभान अल्लाह, क्या बात।
कह रहे कैसे। कह रहे सर एक यूं समझ ले कि हमारे वालिद साहब ये कंपनी के बॉस हैं, हम सब इनके मातहत हो गए, और हमारा घर एक समझे कंपनी है, कंपनी के बॉस वालिद साहब जिस किफालत करते थे, लेकिन इस कंपनी को चलाना ये किसी मैनेजर का काम था, कि किसके कपड़े कहाँ टांकने, किसके कपड़े धोकर कब इस्त्री करने हैं, कहाँ रखने हैं, घर में आज क्या पकेगा, खाना पक के दस्तरखान बिछाना, दस्तरखान पे सबको खिलाना, खिलाने के बाद बर्तन उठाना, बर्तन धोना, फिर सर्दी गर्मी के मौसम के हिसाब से खाने पकाना, फिर अगर किसी को मतलब बीमारी हो गई तो उसका परहेजी खाना बनाना, उसको वक्त पे दवाई देना, फिर अगर वो जनाब कोई मेहमान आ जाए तो मेहमानों के दर्जन भर मेहमानों का खाना बनाना, फिर वो मेहमान आएंगे तो वो सारे घर का निज़ाम धर्म भरम तो उसको भी सेट रखना, फिर जनाब अगर कहीं जाना है तो उसकी तैयारी करना, और रात को सबको सुलाकर सोना, और सुबह उठने से पहले उठना, ये सारी बातें करने वाली मेरी माँ थी।
क्या बात, क्या बात,
मेरी माँ थी। میری ماں ایک بہترین مینیجر تھی.
کیا ہوا؟
بلکہ کہا کہ وہ ابو کے جو فائلیں ہیں, ابو کی موٹر سائیکل کی چابی, ابو کا پرس بھی امی کے پتے پہ ہوتا تھا.
کیا ہوا؟
اور کبھی کبھی ہم ابو کو چھیڑتے تھے کہ ابو آپ برائے نام ہی گھر کے سرپرست کہلاتے ہو, اصل مالک تو ماں ہے, میری امی ہے. تو وہ بھی مسکرا کے کہتے کہ ہاں تیری امی کی ہوتے ہوئے مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی.
کیا بات.
تو یہ ایک جنرل, ایک اگر دیکھا جائے تو ایک سینریو میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہر گھر کی کہانی, اور یہ وہ خوبصورت مطلب شخصیات ہیں ہمارے گھر کی, اور یہ خوبصورت ایک مطلب سمجھے کہ رونق ہے ہمارے گھر کی, کہ اگر یہ ہوتے ہیں تو پھر وہ گھر کی رونق ہی دوبالہ ہوتی ہے.
مان بھائی نے جو بات کی تھی نا کہ یہ ہمیں ٹوکتے تھے کہ یوں نہیں کرو, یوں کرو, دیکھو ایسے نہیں کرو, اس کو ایسے کرو, تو یہ بھی ایک خاموش تربیت ہوا کرتی تھی. اور جیسے یہ فرما رہے ہیں نا کہ اب اگر نہیں ہے تو وہ باتیں یاد آتی کہ یار اب کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے, اب کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. اس وقت تھوڑا فیل ہوتا ہوگا, لیکن اب یاد آتا ہے کہ یار کوئی ہو جو ہمیں مطلب بتائے, ہماری اصلاح کرے.
جو آپ کی بات کو بھی اگر میں سیکنڈ کروں تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ جو بھی جنریشن ہے, ظاہر ہے اگر ہم اگر اس عمر میں تھے تو ہم نے بھی ایسے موقع پر سوچا ہوگا کہ یار یہ بات بات پہ ٹوکنا, بات بات پہ کڑ کڑ کرنا, تو یہ بھی مطلب یہ سمجھیں کہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے. اور انسان جب ان سب چیزوں کو لے لیتا ہے, جیسا کہ کہیں سنا ہوگا میں نے اس سے پہلے بھی واقعہ کہ اسی طرح کا ایک نوجوان جو تھا وہ جب اس کا اس نے بھی جاب ڈھونڈنی تھی, اور جاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس کو جاب ملی کہ جناب دوسرے شہر میں ہے, تو وہ تصور کرنے لگا کہ یار اتنے بڑے ہو گئے لیکن اب بھی اگر اٹھو نا بستر پر تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے اماں کی آواز آتی ہے, اے چادر اٹھا کے رکھنا, بستر لپیٹ کے رکھنا. اوے بچپن سے ہی اٹھا رہے, بچپن سے ہی لپیٹ رہے, اماں کی عادت ہے, اماں نے بولنا ضرور ہے. غسل خانے میں جائیں گے تو فوراً آواز آئے گی, کپڑے صحیح سے ٹانگنا, تولیہ کے نیچے نہیں گرانا. اچھا باہر نکلو تو ابا کی آواز آئے گی, نل بند کیا, لائٹ صابن اوپر رکھا. اچھا کمرے سے باہر نکلو تو پھر ابو پنکھا بند کیا, لائٹ بند کی. ارے یار تنگ ہو گئے یار, یہ روز روز کی کڑ کڑ تو ہم کو مطلب پریشان کیا ہوا ہے. تو وہ نوجوان سوچنے لگا یار چھوڑو یار, اچھا ہے دوسرے شہر میں جائیں گے اپنی لائف گزاریں گے. تو وہ یہ سوچ کر جب فیکٹری پہنچا اپنے جہاں انٹرویو ہونا تھا, تو نیچے ہال میں ینگسٹرس کو جمع کیا ہوا تھا انٹرویو والوں کو, تو یہ بھی جا کر بیٹھ گیا. اب وہ کمرے میں دو پنکھے چل رہے تھے, ون بائی ون سیکنڈ فلور پہ انٹرویو ہو رہے تھے, وہ ون بائی ون اوپر چڑھ رہے تھے, یہ بھی انتظار. تو جب اس سائڈ کے جب چلے گئے تو پنکھا فالتو چل رہا تھا, تو یوں لگا جیسے ابا کی آواز آئی پنکھا بند کر, تو وہ اٹھا اور پنکھا بند کیا اس نے. اچھا جب یہ لاسٹ میں نکلا تو حسب عادت اس نے پنکھا اور لائٹ بند کی. اچھا جیسے سیڑھی چڑھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے, لائٹ جل رہی تھی, عادت تھی فالتو لائٹ نہیں جلانے دی, لائٹ بھی بند کر دی اس نے. اچھا اور اوپر چڑھا فرسٹ فلور پہ تو راستے میں جگ گلاس پڑا تھا,
اللہ
اچھا اس نے کہا کسی کو لگ جائے گی. اس نے جگ گلاس اٹھا کر وہ ٹیبل پہ رکھا تو وہ کولر پہ پانی ٹپ ٹپ گر رہا, تو اس نے کولر نل بھی ٹائٹ کر دیا. سیکنڈ فلور پہ پہنچا تو کرسی اور ٹیبل سے راستہ رکا ہوا تھا, سب سب بچ بچ کے جا رہے تھے, اس نے دھکا دے کر راستہ کلیئر کر دیا. اچھا اوپر جب آفس میں پہنچا تو دیکھا کہ مینیجر کے روم سے وہ کوئی جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے, تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کوئی انٹرویو نہیں ہو رہا بھائی, فائل نہیں جمع ہو رہی ہیں, کنٹرول نہیں لے رہے. کر نہیں کچھ پوچھا ہی نہیں ہم سے, فائل لے کے رکھ لی. اچھا اب یہ بھی کہنے لگا رہے یار خمگا میرا چکر ہو گیا, چلو فائل جمع تو کراؤں. اب وہ فائل جمع کرانے جب اندر گیا تو مینیجر نے اس کی فائل دیکھ کر کہا کہ ہم آپ کو جاب دینا چاہتے ہیں,
اللہ اکبر,
آپ کب سے جوائن کر سکتے
ہیں؟ کیا بات ہے,
ڈائریکٹ ڈائریکٹ. اب یہ بڑا حیران ہو گیا کہ یار میرے تو دیکھو پوچھا ہی نہیں اور یہ تو جاب دے رہے. تو کہا سر انٹرویو, کہا ہم انٹرویو نہیں لے رہے, ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے لگا رکھے ہیں, اتنے سارے نوجوان آئے تھے, آپ نے ہی فالتو پنکھا بند کیا تھا,
کیا بات,
آپ نے ہی راستے کی لائٹ بند کی تھی, آپ نے ہی جگ گلاس اٹھایا تھا, آپ نے ہی کولر کے نل کو ٹائٹ کیا تھا, آپ نے ہی ٹیبل کرسی ہٹائی تھی,
کیا بات,
لگتا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کی اچھی تربیت کی,
کیا بات,
اب آپ کو جاب دینا چاہتے,
کیا بات.
واقعی یہ تو یادیں رہ گئیں کہ اگر آج کسی کو یہ ڈانٹ پڑی ہے, آج کسی کو یہ مار پڑی ہے, اور آج کسی کو کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے, تو یہی وہ بات ہے کہ جس نے آج کئی ایک ڈسپلن سکھائے. اور خاص کر جس طرح ہماری جو بات ہو رہی تھی कि खाली जमा करना ही नहीं, नवीद भाई जो एक वेलकम का जो अंदाज होता है ना खानदान वालों के आने का, देखिए ये भी बड़ा मैटर करता है। यानी आप किसी के आने पर अपनी फीलिंग्स ऐसी शेयर इजहार करेंगे कि जिससे सामने वाले को पता चलेगा मेरा आने को बुरा लगा,
ऐसा ही
ये क्यों लगता है। यानी आप कोई मेहमान आया है और हदीसों में है कि मेहमान अपना रिस्क लेकर आता है और जाते हुए मेजबान के गुनाह लेकर जाता है। मेहमान आता है अल्लाह पाक की उस घर में रहमतों का नुजूल होता है।
सब एक रिवायत में है कि 10 फरिश्ते एक साल तक उसके घर में रहमतें लुटाते रहे जिस घर में मेहमान आ जाए।
और लेकिन ये नवीद आजकल नहीं है यार, आजकल तो यही है कि यार बन आज, बल्कि इसमें भी कंपटीशन है। वो किसी ने कहा कि वो अम्मी आ रही हैं शाम को, एक शौहर ने ऑफिस जाते जाते अपनी बेगम से कहा कि आज अम्मी आ रही हैं तो कुछ पका लेना, तो उसका एकदम मुंह बन गया ना। और शाम हुई जब आया तो उसने कहा क्या पकाया है, मेरी तबीयत सही नहीं थी आज, मैंने कुछ नहीं बनाया। अरे अम्मी ने आना था। नहीं नहीं बस मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। ये कही थे अचानक बैल बजी, तो उसके शौर ने कहा कि जाओ देखो कौन आया। जाके दरवाजा खोला तो उसकी बेगम की अम्मी खड़ी थी। अरे अम्मी आप आइए 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 आइए, बच्चे साथ आप आए, आपने बताया नहीं। नहीं कल सुबह ही हमने तो दामाद जी को फोन कर दिया था। अब ये एकदम से हक्का पक्का रह गए कि ये क्या हो गया। अब ये अंदर कमरे में आई और कहा क्या आपने बताया नहीं अम्मी आ रही, तो सुबह से कह रहा हूँ अम्मी आ रही। नहीं मेरी अम्मी, तो मेरी तेरी क्या है, अम्मी तो अम्मी है, तेरी आए या मेरी आए। तो अब ऐसा तो नहीं ना कि तेरी अम्मी आएगी तो तू उसको मुर्गिया खिलाएगी और मेरी अम्मी आएगी तो तेरे सर में दर्द हो जाएगा। तो ये तो गैप हो गया ना जी। तो हमारा वो जो बिहेवियर है, वो जो अंदाज है, यकीन माने ये वो चीज होती है कि जिससे आपके दिल में उतर सकते हैं आप, दिल में उतर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होगा है यूसुफ भाई, अगर ये नहीं होगा आप यकीन माने, ये ऐसा नहीं है कि किसी के घर में वो अपने घर में चटनी रोटी में खुश है, यकीन माने
खुश है सही।
आप ये समझे कि अगर ये मेरे घर में आकर जनाब इन्होंने चूंकि अच्छा बनाया, हम अच्छा खिलाते पिलाते, हर चीज खाने पीने के लिए नहीं होती है, ये जो दिल को जो राहत है और ये जो कनेक्टिविटी है और इस्लाम ने जो सिले रहमी के ये जो हमको दर्जे दिए हुए, ये जो चांस दिए हुए, यकीन माने इससे जिंदगियां बढ़ जाती हैं। इससे ये अमल करने वालों के मतलब रोजी रोजगार में बरकत होती है। अगर ये खानदानों की जो मोहब्बतें प्यार और ये उल्फतें आम हो जाएं तो आज खानदान के खानदान कितने बढ़ जाते हैं। तो इस पे भी रफीक भाई को याद है कि बस ऐसे जो वार्म वेलकम होता था और जो खानदान इतने बीसियों बच्चे आ रहे हैं घर आ रहे हैं, तो ये भी तो पकता ही था ना भाई,
सही था ना,
पूरियां पकती थी ना कि भाई एक एक आदमी भी चार चार पांच पांच पूरियां खा लेता है, तो वो जो 50 आदमी आ गए तो 200 पूरियां बनानी है ना। तो ऐसा तो नहीं है अब कहीं जाके कोई ऑटोमेटिक मशीनें आ गई होंगी, पहले ऐसे थोड़ी था।
बिल्कुल
क्या बोलते हैं,
हाँ आई साहब ये बिल्कुल सही तवज्जो दिलाई आपने। और ये हकीकत है कि जो बिहेवियर है ना ये बहुत मैटर करता है। यानी कोई मेहमान आपके घर आया है, ठीक है, रिश्तेदार है तो वो तो डबल उसका मतलब हक बनता है कि एक तो रिश्तेदारी भी और ठीक है एक मेहमान भी है, तो उसको अगर आपने अच्छा वो दिया, वेलकम किया, बिल्कुल संदा पेशानी से आप पेश आए और बिल्कुल कोई ऐसा तासुर नहीं दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका दिल और बढ़ेगा, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी और वो ज़ाहिर है आपकी मोहब्बत की वजह से जो है ना आइंदा भी आपसे यानी कि रबते की और उसमें रहने की कोशिश करेगा। अच्छा इसमें जो है ना मैं मुझे याद आती है मेरी वालदा मरहुमा जो है ना माशाल्लाह, जैसे ईद का मौका होता जी, या जी, कोई भी, तो माशाल्लाह रात से ही वो शीर खुरमा
तैयारी,
ये तैयारी और पूरियां और ये सब और ये आटे वाटे और ये सब सारी चीज़ें जो है ना रात से ही वो। और ये भी होता था कि जैसे ईद होती थी, ईद की नमाज़ पढ़ के हम जैसे आते थे, तो माशाल्लाह हमारे मामू जो थे वो बिल्कुल माशाल्लाह अपने बच्चों को लेकर हमारे घर तशरीफ लाते थे और उनसे हम मुलाकात करते थे, हम सबको ईदियाँ मिलती थी, फिर जो है ना उनके बच्चों से मिलते थे, फिर मामू का बहुत जबरदस्त माहौल होता था,
सब लोग गैदरिंग बना के जमा होते होंगे उस वक्त के ऊपर, तो कैसी मोहब्बतें बट रही होती होंगी, यानी कि वो जो ईदी मिलती होगी उस वक्त एक अलग
मोहब्बत और निराला अंदाज होता होगा, कैसे जिंदगी गुजरती होगी।
बिल्कुल अंदाज, और वो बिल्कुल नकुश रहता है दिनों में,
नकुश रहता है।
अच्छा, मैं थोड़ा सा एक अभी फिलहाल एक जो अभी माशरे में एक हमारा थोड़ा सा एक अलमिया है कह लें कि इसकी तरफ भी मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, हमारे यंगस्टर्स भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसमें मैंने अक्सर देखा, बल्कि आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, मदनी चैनल के नादरीन ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम दुनिया भर को कहते फिरते हैं कि यार हमारे लिए दुआ करो, ठीक है ना, इमाम साहब को, किसी और को, किसी एक्स्ट्रा डेट कुलिग्स को, जो भी है, लेकिन हमारे दुआ के दर जो हमारे घर में है, यानी वालदैन या वालदा या वालिद या दोनों या तो दोनों में से कोई एक, उनसे हम दुआएं नहीं लेते, यानी दुआएं नहीं लेते इन सेंस के, यूं तो चलो हम कह लेते होंगे, ठीक है ना, कभी कभी अभी हाथ चुभने की भी बहुत मतलब मतरूक होती जा रही है,
ऐसा ही,
ठीक है ना, तो इनसे हम नहीं लेते और दुनिया भर को हम कहते फिरते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने तो ये ऑब्जर्व किया, हो सकता है ऐसा आपने भी किया हो कि आप दावत में गए, ठीक है ना, और एक बुजुर्ग बैठे हैं, ठीक है, अब उनके बेटे आए, अब उन्होंने जितने भी टेबल पे बैठे हुए हैं सबसे हाथ मिलाया, वालिद से नहीं मिलाया, यानी कि अलमिया है ये कि अच्छा अगर पूछो तो कहते हैं वालिद से तो रोज मिलते हैं, अरे भाई आपके वालिद हैं, इनसे तो बदरजा उला आपको, यानी इनके तो हाथ चूमने भी चाहिए,
सही,
मिलाना तो दूर की बात। तो मकसद कहने का ये है कि अभी जो है ना हम लोगों को ये मतलब माहौल या इसने इस तरह वो कर दिया है कि हम जो है ना मतलब अपने वालदेन की जो सही मानों में कदर है वो हम बिल्कुल हमारे जहनों से बिल्कुल ओझल होती जा रही है।
दूसरी बात अभी जो आपने फरमाया ना पूरियों की, और ये तो ये इससे एक जहन बन, यानी जो मेरा बचपन गुजरा और जो मुझे बचपन की याद आ रही है कि यहाँ पर हमारे जो एक नशो नुमा और तरबियत है ना उसमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल है ना, कि ये अशआर या जिसको कहते हैं ना मामूलात अहले सुन्नत में से, कि वो रजबुल मुरजब में खीरज पूरी, जिसको मेमनी में खीरज पूरी कहते हैं, कि पूरी और जो होती है
खीर,
अब वो हमारी नानी अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए दर्जात के बुलंद करे, आई साहब यानी रजब आता ना वो बस नानी के घर पे जाएंगे खीरज पूरी होगी ना। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा तरीका इस्तेमाल किया था, आज भी हम उनको याद करते हैं, यार वो बस वो वक्त था ना कि वो जो खीर होती जिस प्लेट में जमाई जाती उसमें वो चवन्नी अठन्नी और एक रुपये का सिक्का ऐसा वो डाल देती ना, वो प्लेट भर देती। अच्छा, कमाल की बात है, आजकल तो रेडीमेड पूरियां मिल जाती है ना, वो खुद ही पूरियां बना रही है और मतलब पूरा खानदान जमा हो रहा है, नहीं एक दो लोग जमा हो रहे, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म पूरियां मिल रही हैं, दस्तर बिछे हुए, वो खीर के इतने सारे खीर के प्याले और पड़े हुए, अब एक निवाला डालो तो किसी के आते चवन्नी है, दूसरा डालो तो अठन्नी है। अच्छा, अब उसमें सब बच्चे ना वो क्या करते, पूरी कितनी लेते यानी फिर वो फालूदा बना के, आज भी मेरी वालदा अल्लाह उनको सलाम दी दे, दराती में शेर दे, वो बनाती है ना। तो यही आप हम यानी इस्तार के वक्त भी हम ईसा अलैहि सलाम करते हैं कि यानी नानी हमारी ऐसी बनाती थी, वो वक्त नवीद भाई रफीक भाई ऐसा वक्त होता ना, उसमें हमारी एक दीनी तरबियत भी होती थी और नमाजों की फिक्र के नमाज पढ़ो, अब उस वक्त मुसल्लम को बिछाते चलो नमाज पढ़ो, चादर बिछाती के चलो दुरूद शरीफ पढ़ना बैठ जाओ, ये बड़ों की तरबियत भी ऐसी हुआ करती। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम माहौल में, तो इनकी एक तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा भी है।
और ये एक बात, एक जुमला कहा जाता है कि रिश्तेदारों के आने पर हमारा लहजा और हमारा चेहरा ये बता देता है कि आपका इस आने वाले के दिल में क्या जगह है।
बेशक, ऐसा ही,
यानी ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और अभी जो हम इस तरफ जो एक बात कर रहे हैं, ये भी हमारी जनरेशन को हमारी तरबियत की कमी है। जा रहे अगर ये जिस घर में भी है, चाहे वो घर मेरा हो या किसी का भी हो, अगर आने वालों से मेरे बच्चे नहीं मिलते, और होता है कि यहाँ मेहमान आए वहाँ से बच्चे निकल गए, यानी यहाँ बहनें आए बेटियाँ आई हैं तो पता चला सगा भाई बगैर मिले चला गया दोस्तों में, तो ये चीज़ें मैटर करती है। एक तो आना ओपन करें कि आए
आए,
और दूसरा आने पर इनका वेलकम। हाँ, जो शरी तकाजे हैं कि इसमें बच्चे बच्चियों का जो मिलाप है, अगर मामूजादे खालाजादे तो वो तो आपस के पर्दे के मसाइल हैं, तो वो एक अलग बात है कि वो फिर लेडीज लेडीज में, जेंट्स जेंट्स में, कि कहीं है, ये ईद के नाम पर नरे बेपर्दगी नहीं होगी, ईद के नाम पर कोई इख्तलात नहीं होगा, गैदरिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें शरी मसाइल हो, लेकिन बट ये जो आपस का मिलना जुलना है ये मोहब्बतें बढ़ाता है। और ज़ाहिर इंसान जब इस तरह का मामला करता है तो एक बात है, जैसे अभी आपने भी एक बड़ा खूबसूरत यादगार वाक्या सुनाया कि वो चवन्नी अठन्नी मिलती थी, तो ऐसे होते हैं, ऐसे कई वाक्यात घरों में होते हैं कि भाई इस तरह के जो फैमिली के जो गैदरिंग है वो इस गैदरिंग में जाने के बाद जो है वो फील होता है।
अच्छा, आप तो कभी कोई ऐसा कोई वाक्या बचपन का कोई गुजरा हो आपको याददाश्त में आ रहा हो, क्योंकि दादा आपकी उम्र है कराची में है, क्या तरकीब रही, कुछ वक्त आपका गुजरा हो?
नहीं, बचपन की तो ईदें तो बस ज़ाहिर ऐसी गुजरती थी, लेकिन यही होता था कि जब बिल्कुल छोटे थे तो दादा हयात थे
माशाल्लाह,
तो वो एक डिसिप्लिन बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा सख्त था, और बाद में जब ज़ाहिर उनके बाद जाने पर थोड़ा कम हुआ, हमारे बड़े होने पर हमने और ज़्यादा लूज कर दिया, तो अब एक और कमी भी देखी जाती है कि रात चूँकि जागने का रुझान होता है ना, तो ईद का दिन सोने में गुजरता है, और चूंकि अब हमारे चूंकि तंजीबी एक मसरूफियत होती है तो बाद औकात ईद जल्दी जल्दी मिलकर वो काफले में या दीगर अपनी जो दीनी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनके हवाले से होता है, तो बाद औकात होता है कि ईद में जो है वो उनकी कोई कमी महसूस होती है कि अगर कोई ऐसे दुनिया से चले जाते हैं, ईद के दिन उनकी कमी महसूस होती है कि वो थे तो ये हो रहा था, वो नहीं है तो वो चवन्नी अठन्नी नहीं मिल रही होगी, है वो चवन्नी अठन्नी नहीं मिल रही होंगी, वो ज़ाहिर पहले अगर कोई ऐसे बुजुर्ग हयात होते हैं तो ज़ाहिर बच्चों का भी एक चांस होता है कि भाई ईद ज़्यादा मिलेगी, ईद अच्छी मिलेगी, क्या यादें हैं कुछ इस मामले में को वाकया अगर हो तो?
मैंने अपने वालिद ग्रामी की आदत देखी, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे,
आमीन,
बचपन से ही यानी समझे कि उनकी एक तबीयत थी, और समझो कि होते ना फिक्स के करना ही है, ईद के दिन वो अपनी बहनों से मिलने जाते
क्या
और मुझे भी साथ ले जाते। अब उस वक्त मैं भी जाता था कि चलो जाऊंगा तो वहाँ पे खाने को भी मिलेगा और सब इतना मोस्ट वाउ वेलकम, जिसको बोलते ना बहुत खुश दिली के साथ वेलकम करते हैं और मुझे ही बड़ा खुशी होती है। अब उस वक्त उम्र बहुत छोटी थी, अब उस वक्त वो मुझे ईदी थे 10 रुपये और मैं हो जाओ खुश के 10 रुपये ईदी मिलेगी यार। अच्छा, उनके वालिद साहब की मैं नोट करता था ना कि वो हर बहन के घर पे जाते, उनसे उनके हालात पूछते, उनसे पुर तपाक लहजे से मिलते, उनसे बात करते, हंसते मुस्कुराते फिराते, फिर दूसरी बहन के यहाँ जाते, या उनकी उस बहन के यहाँ जाना है, फिर तीसरी बहन के यहाँ। यूं वाले साहब की जो उम्र का आखिरी हिस्सा रहा तब तक इनकी आदत थी कि वो हर बहन के घर पे जाते। अब चूंकि फिर एक उम्र हो गई, फिर हम भी जवान हुए तो जवान के बाद शादी हुई तो बच्चे, फिर भी मैं जाता था, मुझे बोलते बेटा चलना है, मेरा ऐसा मैं चलता हूँ, पहले वो गाड़ी चला के जाते थे फिर इनको मैं लेके जाता था। अब वो फुपियां जो थी उसमें तो किसी का इंतकाल भी हुआ लेकिन मुलाकात आज भी रहती, फोन करते एक दूसरे के अलग से अलग करते, ईद के मौके मुबारकबाद देते, तो ये मैंने चीज एडॉप्ट की और भी आई साहब ने बड़ी खूबसूरत तवज्जो दिलाई। तो मैं यहाँ मदनी चैनल के नाजरीन बुजुर्ग इस्लामी भाइयों से भी अर्ज करूंगा और यंगस्टर से भी अर्ज करूंगा कि अपने आप को अपने रिश्तेदारों से मरबूत रखें। देखिए जनरेशन का जो गैप आएगा ना, फिर आज आप अपने दादा को तो जानते हैं, अपने कजन को जानते हैं, लेकिन शायद आपके जो आने वाली औलाद होगी ना वो आपके कजन्स के बेटों को नहीं जानेगी, तो ये जनरेशन गैप आएगा ना तो खानदान फिर यूं ही अलग हो जाते। तो खुदा रा इस ईद के मौके पर अपने रिश्तेदारों को एटलीस्ट फोन कर ले, अब तो मोबाइल है ना, मैसेज कर दें सलाम वालेकुम, तो यूं आपका कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा और आपस में मुलाकातें हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह यूं मोहब्बतें भी बढ़ेंगी। तो क्या फरमाते हैं साहब?
एक ऐसा पॉइंट आखिर में आपने लिया है कि जिसमें हमें इस बारे में सीरियस होना पड़ेगा,
सीरियस
अब तक अगर गैप है भी तो आज ही, बल्कि माशाल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में जिस तरह से एक माहौल बनता है कि भाई आपने जुमा मुबारक कहना है, आपने उनको जनाब वेलकम करना है, तो ऐसा एतिकाफ में भी हमने बाहरें देखी है कि माशाल्लाह इन्होंने हाथों हाथ निगरान शूरा ने अमीर उसने तरगीब दिलाई तो हाथों हाथ फोन हो रहे हैं, तो माशाल्लाह दावत इस्लामी में तो हर जुमा को मुबारकबाद देने का एक तरगीब मिलती है, तो खासकर ईद का दिन है, और जैसा नुमान भाई ने भी तवज्जो दिलाई कि आज ही हिम्मत कीजिए और मुलाकात करने के लिए चले,
अभी हिम्मत कर लें,
किसी दूसरे शहर में फोन उठा लें, आप शायद सोचेंगे कि यार वो तो नाराज है कई अरसे से, तो बड़ा जबरदस्त मौका है, ईद का दिन है, कोई अच्छी सी डिश लेकर कुछ ऐसा मिठाई का डब्बा लेकर पहुंच जाए, इंशाल्लाह इस ईद के सदके जो है वो दूरियां दूर हो जाएंगी और इंशाल्लाह दोबारा
खुशियां बढ़ेंगी ना। ये खुशी का दिन है मदीन जनरल के नाज़रीन, इन खुशियों को बांटें, यानी कि उन 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 जगहों पर जाइए कि जहां खुशियों की ज़रूरत है, और आप खुशियां लेके जब पहुंचेंगे ना तो इंशाल्लाह बरकतों से नवाजे जाएंगे।
इंशाल्लाह ऐसा भी होना चाहिए था कि जो नाराज़ है ना वो भी थोड़ा दिल बड़ा कर लें।
वाह,
अब एक जब आया है तो अब आप उसको कि अब इतने सालों के बाद तुम्हें याद आया और यूं यूं, तब वो शिकवे शुरू। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो मना कर देते कि भाई हमें आपसे नहीं रखना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक तरफ से जो है वो मोहब्बत का पैगाम आ रहा है तो आपको भी दिल बड़ा करके जो है ना सारे शिकवे गिले मिटा के आपस में जो है ना
कबूल,
इससे इंशाल्लाह आपकी औलादें वो करीब आएंगी और इंशाल्लाह एक ख़ानदान में ये जो गैप था ना एक, ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और इसकी बरकतें इंशाल्लाह अपनी पूरी नस्ल तक आगे
चलेगी।
बिल्कुल,
मतलब
रहे ना
जी जी,
तो उसकी अहमियत अलग होती है। देखिए जो ख़ानदान से बिल्कुल कटा हुआ है उससे अगर आप पूछेंगे ना तो उसको इस बात का दर्द ज़रूर रहेगा, हर वक्त उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि यार मैं ख़ानदान से कटा हुआ हूँ। कभी कभी दिल में आता भी है कि यार मैं मिल लूँ, लेकिन वही अनानियत और मतलब है कि मैं क्यों जाके मिलूँ और ये लोग इनको चाहिए मुझसे मिले, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है ना वो रुकावट बन जाती है और वो फिर मतलब नहीं जा पाता। लेकिन उसको एहसास ये होता है कि मैं ख़ानदान से कटा हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह जब जुड़े हुए होंगे ख़ानदान से मिले हुए रहेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें भी नसीब होंगी और इंशाल्लाह एक दूसरे की खबर गिरी और काफ़ी फायदे होंगे इंशाल्लाह।
आजकल दौर जो ना बहुत फास्ट हो गया है और हर कोई आजकल मोबाइल और कम्युनिकेशन के ज़रिए ही रब्ता रखता है आजकल, बल्कि शादी कार्ड भी जो है वो सिर्फ व्हाट्सअप कर दिए जाते हैं। और ये ईद का ऐसा मौका होता है कि इसमें बाकायदा फिज़िकली तौर पर रिश्तेदारों से जाके मुलाकात कर ली जाती है, सिला रहमी का जज्बा बढ़ जाता है, और जब जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। खाला के घर पे आते हैं, खाला इतनी खुश होती हैं कि भाई साल भर कोई नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह ईद के मौके पर अपना आ गए। फुप्पी के घर जाते हैं, दीगर मौके भी जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है।
देखिए आसिफ भाई, उसूली बात है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आपस में मिलजुल कर रहे हैं।
सही
बात, ठीक है ना, तो यही हम भी तो अपने वालिद की औलाद ही है ना भाई बहन। अगर आज हम भाई बहन दूर हैं तो इसका मतलब हमारी औलाद हमसे क्या तरबियत ले रही है कि भाई बहन दूर रहने चाहिए? नहीं नहीं, भाई बहन साथ रहने चाहिए। तो ये मौका है कि जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों की भी तरबियत कर सकेंगे, और यही दुख सुख जैसे नवीद भाई भी फरमा रहे हैं कि हमारे आपस के मिलने से दुख सुख दूर होते हैं, गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं, और यकीनन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दुआएँ भी मिलती हैं, और जब दुआएँ मिलती हैं तो बरकतों का नुज़ूल होता है। इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह पाक हमारी मोहब्बतें सलामत रखे और हमें अपने दीन इस्लाम की मुबारक तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह घरों में अमन भी कायम होगा, आपस के रिश्ते भी मजबूत होंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अला अल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।